ओम शांति। क्लास करने आए हैं सभी या चिट चैट करने के लिए आए हैं या प्यार का अनुभव करने के लिए आए हैं? प्यार का अनुभव। मधुबन में ये रात्रि क्लास का बाबा के दिनों का फिक्स है, तो इसलिए हम भी जब सेंटर में शुरू शुरू में रहना शुरू किया तो दादी हमेशा कहती थी कि रात को आपस में बैठ के चिट चैट करो। ऐसे नहीं एक व्यक्ति को सुनना, चिट चैट करना, माना सब आपस में सुनाए, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये सोचा, आज मेरी ये भूल हो गई तो मैंने इस प्रकार से भूल को करेक्ट किया। तो ऐसी चिटचाट कौन करता है? आपस में जब भाई बहन बैठते हैं और बिल्कुल ऐसे अपनेपन की भासना का अनुभव होता है तब ऐसी चिटचाट कर सकते हैं ना। नहीं तो वैसे लोग भूल करते हैं तो छिपाएंगे सबसे। ऐसे होता है ना, लेकिन यहाँ छिपाने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमें पता है हम सब भूल करते हैं। तो आपस में बैठ के प्यार की लेन देन कैसे की जाती है ज्ञान में? लौकिक हिसाब से बात सोचो ही नहीं, प्यार की लेन देन कैसे होती है? और हम आपस में बैठ के एक दूसरे से प्यार से ज्ञान की बातें करें, यही है प्यार की लेन देन। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के लेन देन से एक दूसरे की उन्नति होती है, इस प्रकार की लेन देन से एक दूसरे की कमजोरी नहीं देखते हैं। ज्ञान की लेन देन से कमजोरी देखने की जो आदत होती है ना, वो आदत छूट जाती है। और ये आदत सब में होती है कमजोरी देखने की, इसने ये किया, इसने ये किया। और आपस में लेन देन पुरुषार्थ की, आपस में लेन देन ज्ञान की, आपस में लेन देन सेवा की, उन सब में हम क्या देखते हैं, क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि हम आपस में भाई बहने सबके दिल में कितनी शुद्धि है। संस्कार तो सबके हैं, सबके अलग अलग संस्कार है, इसलिए कभी थोड़ी बर्तनों की टक्कर होती है तो आवाज आता है ना, तो ऐसी टक्कर हो जाती है, वो भी लाइफ, वो तो होता ही है। लेकिन आप देखेंगे कि जब ऐसे हम आपस में बैठ के लेन देन करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्राह्मणों जैसी शुद्धि किसी में भी नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, बाहर कितनी गंदगी है, कीचड़ पट्टी है, तो कीचड़ पट्टी तो वो वही कीचड़ पट्टी, देह अभिमान की कीचड़ पट्टी, स्वार्थपने की कीचड़ पट्टी, अभिमान की कीचड़ पट्टी, कमजोर संकल्पों की कीचड़ पट्टी। और ब्राह्मणों को भले आएंगी भी कमजोरी कभी कभी, लेकिन इनकी ब्राह्मणों की इच्छा यही होती है कि हम इनसे मुक्त हो जाएं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमारा भाग्य है कि हम ऐसी आत्माओं के साथ सेवा करते हैं, ऐसी आत्माओं के साथ हमारा पाठ है। तो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर हमारा देखने का तरीका, समझने का तरीका, जानने का तरीका इस प्रकार से हो, हम देखते हैं कि कोई भी सेवा के मीटिंग होती है तो वैसे कोई नहीं दिखाई देंगे, बहुत समय से देखे नहीं होंगे, क्लास में आएंगे, कभी आएंगे, नहीं आएंगे, या दूर रहते हैं इसलिए नहीं आते हैं। सेवा में सब पहुंच जाएंगे और हाँ चलो ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी अच्छा है, यही ये भी अच्छा तरीका है। तो ब्राह्मणों को औरों को कैसे फायदा मिले, ये जैसे बहुत ही उत्सव रहता है, उत्साह रहता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़े सबसे पहला गुण है ब्राह्मण जीवन का, कौन सा? पवित्रता। लेकिन पवित्रता लिविंग, यानी हमारे जीवन में पवित्रता से रहना माना क्या? निस्वार्थपना, अपनापन, लेकिन निस्वार्थ। जो भी हम करते हैं, आप सभी सेवाधारी है ना, या पार्टियां भी आए हुए हैं, कौन है आप सब? सेवाधारी है ना सभी। आप कहाँ कहाँ से आए हैं? अपना घर छोड़ के, आप अपना परिवार छोड़ के, अपनी मनपसंद खटिया छोड़ के। मनपसंद खटिया होती है ना घर में, हाँ, मनपसंद खटिया, मनपसंद खाना, मनपसंद सब कुछ होता है। जितने जितने बुजुर्ग होते जाते हैं ना, तो अपनी मनपसंद की चीजें ज्यादा सहज रहती हैं, तो अच्छी लगती हैं। और आप सब ये सब छोड़ के यहाँ आ गए मधुबन में। एक कमरे में कितने जने सोते हैं? सात है ना, और से इनसे ज्यादा? दस, बारह, बीस। बीस जने कमरे में सोते हैं। घर में बीस सोते हैं कमरे में? नहीं सोते हैं ना, हाँ, टोटली घर में बीस नहीं होते, सही बात है। तो आप ये सब छोड़ के यहाँ आए हैं, तो आपके अंदर की भावना ये जो है ना, कि सेवा, बाबा की सेवा, बाबा की सेवा। और आप कुछ भी करने में संकोच नहीं करेंगे। रोटी बेलने की, उस दिन मैंने देखा अनाउंसमेंट हुआ, रोटी बेलने की जरूरत थी क्लास के समय, सब भागे उठ के माताएं। उस समय मुरली भी छोड़ दी, सेवा के लिए भागे। तो ये निस्वार्थपना जो है, ये बहुत शुद्धि है हम ब्राह्मणों के आत्माओं में, हमारे में भी हमको देखना जरूरी है। जितना जितने इस प्रकार से हमारी अपनी अच्छी अच्छाई हम देखते हैं, तो हम औरों की भी अच्छाई देखेंगे। सब ब्राह्मणों में निस्वार्थपन है, सब ब्राह्मणों में, कोई भी हो, भले कोई कारण अनुसार सेवा नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ योग माना क्या? परमात्मा है कौन? भगवान तो है, लेकिन है कौन भगवान? जिसमें कभी भी स्वार्थपना नहीं। भगवान कभी अपने लिए सोचेंगे? और हम उनके बच्चे हैं, तो हम उनके जैसे हैं। तो आजकल, आज भी बाबा ने कहा ना, कि अगर गुस्सा करते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते हैं। बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कभी तो गुस्सा करता नहीं है। भगवान कभी गुस्सा करते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो हम उनके बच्चे, हमारे वाइब्रेशन, जितना जितना हम भगवान के साथ योग लगाते जाते हैं, तो हमारी मन की स्थिति उनके जैसी बनती जाती है। भगवान को कहते हैं शांति का सागर, यानी कि उसकी शांति की कोई हद नहीं। उसकी शांति की वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलती है, तो मेरी शांति भी कहां तक कैसे बनी है? जब मैं बाबा को याद करने बैठता हूं, तो मुझे ये भान आए कि मेरी मन की स्थिति भगवान परमात्मा जैसी है। और उस स्थिति में हमको बिल्कुल शक कभी नहीं रहना चाहिए, यानी कि उस स्थिति में, उस वाइब्रेशन में, उस एनर्जी में हमको विश्वास हो, संपूर्ण विश्वास हो कि जो बोल, जो शब्द या स्थूल कार्य जो है, हाथ पांव चलाने का कार्य है, वो नहीं कर सकता है, वो शक्ति कर सकती है। हमारे मन की शक्ति वो कर सकती है, वो सेवा कर सकती है। और आजकल तो खास देखा जाए इस सेवा की जरूरत है कि हम बैठे और हमको भान आए। दादी कुमार का कहते अव्यक्त बाप दादा तो कहते थे, लेकिन शुरू शुरू में हम जब आते थे ना, अर्ली 80s की बात है, 80-81 की बात है, तो दादी कुमार का कहते अमृत वेला करने की जगह वो थी, आप जो बैठे ना भाई सबसे पहली सीट में, वो दादी कुमार का की सीट थी, दादी प्रकाशमणि की सीट थी, दादी वहां बैठे अमृत वेला करती थी। और मुझे याद है एक दिन दादी ने बोला कि मुझे जब अमृत वेले बैठती हूं तो मुझे भक्तों की पुकार सुनाई देती है। तो जब भी मैं देखती थी दादी को वहां बैठे अमृत वेले, तो मुझे भी भासना आती थी कि दादी को वो भक्तों की पुकार सुनाई देती है, दादी वो सुन रही है, भक्तों की पुकार दादी सुन रही है, ऐसे मुझे भी भान आता था। तो इसलिए बाबा को याद करना, परमात्मा को याद करना, माना हमारे मन की स्थिति परमात्मा के मन से रेजोनेट करे, कौन सा शब्द है हिंदी में, यानी कि समानता वाली, उनसे मिलती जुलती हो। तो आप जरा सोचें कि जब भी आप बाबा को याद करते हो तो आपकी स्थिति, वैसे तो बाबा तो कहते बाबा सर्वव्यापी नहीं है, यानी कि हमारे अंदर में नहीं रहते हैं बाबा, वो तो हम जानते हैं, लेकिन हम बाबा को याद ऐसे करें, ऐसे प्यार से करें, तो हमारे में और बाबा में कोई भिन्नता ना हो, यानी सेपरेशन नहीं हो, अलगपना नहीं हो। तो आप जब भी बाबा को याद करो, जब भी बाबा की याद में बैठे, तो आप ये सोचें कि मेरे में और परमात्मा में कोई सेपरेशन नहीं, अलगपना नहीं। तो उस समय क्या है, याद भी सहज लगती है, नेचुरल लगती है। वैसे अमृत वेला बैठ के याद करना, रात्रि को बैठ के याद करना, तो है ही, वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते एक सेकंड में जब हमारा मन बाबा के तरफ जाए तो वो भासना आए, जब वो भासना आती है ना तो हमारे श्वास भी बदल जाता है। आपने नोटिस किया है कभी, अब ऐसी याद में बैठेंगे ना तो आपकी श्वास भी बदल जाएगी, एकदम सॉफ्ट मुलायम श्वास हो जाती है और स्लो श्वास हो जाती है, और उस स्लो में इस स्थिति में जैसे कि बाबा यहीं बैठे हैं, हमारे अंदर में बैठे, हमारे नैनों में बैठे, हमारे मस्तक पर बैठे, हमारी गोदी में बैठे, इस प्रकार से बाबा के साथ योग का अनुभव। तो इस प्रकार के योग से वो फिर वो भिन्नता नहीं रहती है और याद सहज हो जाती है, सहज लगती है। तो ये जो निस्वार्थ पने की बात है, तो सबसे पहले पवित्रता की पवित्रता का सबूत है ये निस्वार्थ पना, सत्यता का सबूत है। मुझे याद है शुरू शुरू में हम जब ज्ञान में आए तो ये बात जैसे कि तुरंत समझ में आई, पता चला कि सत्यता माना क्या। सत्यता माना मधुबन में आए, हम मधुबन में आए उसके पहले वो अनुभव नहीं था, वैसे हम नए थे शुरू शुरू में जब मधुबन में फर्स्ट टाइम आई, तो मतलब उस समय निर्णय भी नहीं किया था कि हमको बीके बनना है, क्योंकि मधुबन की बातें बहुत सुनी थी, मधुबन ऐसा है वैसा है, सब मधुबन से आ रहे थे, बहुत अपना अच्छा अनुभव सुना रहे थे, तो हमने सोचा हमको भी मधुबन जाना है। ज्ञान में चलना तो शुरू ही किया था, छोटे थे तो इस वैसे भी नहीं था कि चलो पवित्रता पर चलना है, वेजिटेरियन, वो तो सब था ही, वेजिटेरियन कहो सब कुछ था ही, इसलिए हमको ऐसे नहीं थे 8 मास तक समझो मर्यादा पर चलेंगे तब मधुबन में जाने को मिलेगा। हमको तो तुरंत छुट्टी मिल गई 2 मास के अंदर। लेकिन ये प्रश्न उठता था कि आत्म अभिमानी स्थिति माना क्या। बाबा कहते हैं बिंदी, आत्मा बिंदी है, बिंदी बन जाओ। तो मैंने कहा बिंदी तो अनुभव होती ही नहीं है, ये क्या है। और मैं मधुबन आई तब तक मैं पूछती रहती थी इस बात को कि आत्माभिमानी क्या है, ये बिंदी रूप क्या है। लेकिन जब भी मधुबन में आंगन में ही प्रवेश करते ही ये रियलाइजेशन हुआ, ये रियलाइजेशन कि आत्मा बिंदी तो एक बात है, लेकिन जब आत्मा के गुण हम देखते हैं कर्म में, तो ये हम मधुबन वालों के कर्म में देखा तुरंत ही, नए होते हुए भी देखा मधुबन वालों से कि जैसे कितने शांति से, कितना प्रेम हमने अनुभव किया। और बिल्कुल अपनापन, जैसे कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, और सबको पहली बार ही मिल रहे थे। दादियों से तो कभी परायापन लगा ही नहीं। हम सुशील भाई से अभी बात कर रहे थे कि दादियों से तो ऐसी ऐसी भाषना आई जिससे हम ज्ञान में चल पड़े। दादियों को देखा, दादियों ने दृष्टि दी, चलो दृष्टि दी भी नहीं, देखा भी, तो ऐसे भाषना आई कि हम हैं ही इनके, वो ये हैं ही हमारे। तो उन दिनों में 80 की बात है, मधुबन वालों से भी ऐसी भाषना आई, तब पता चला सत्यता क्या है। सत्यता है शांति, सत्यता है प्यार, सत्यता है एकता। आजकल कहते हैं ना, आज हम एक सेमिनार पढ़ रही थी, उसमें बताया है कि कैसे सबको आदत है आजकल औरों को देख के जज करना। जज करना माना ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये तो ऐसा ही है, और ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये एक प्रकार की जजमेंट हो गई। किसी के ऊपर जजमेंट पास करना, ये भी दिखाते हैं हमारे मन की स्थिति। हमको बाबा ने कभी बोला है किसी के ऊपर जजमेंट पास करो? कभी नहीं कहा, भले हैं भी गलत। बाबा ने मुझे अव्यक्त बोली याद आती है, जिसमें बाबा ने बोला किसी की भूल आप देखो ना तो वो भूल अपनी भूल समझो। आप ये समझो कि ये भूल आपकी भूल है। हमको कभी होता है ऐसे, किसी ने भूल, ये कैसे हो सकता है किसी की भूल मेरी भूल। लेकिन वो तब प्रश्न उठेगा जब ये अलग पना है कि ये वो है, मैं ये हूं, वो और कुछ है, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, माना हम सब एक हैं। तो आजकल हमारा यही पुरुषार्थ चलता है, मैं कभी भी किसी को देख के जज नहीं करूं। लेकिन आजकल तो एक्सप्रेशन ये है, चूज लव। हम किसी से अगर जज भी करते हैं ना, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो भी उसका भी कारण है कि हमारे अंदर डर है। डर माना अगर हम किसी से, हम चाहते हैं कि कोई हमको अच्छा समझे, या हम कुछ करेंगे तो हमको अच्छा नहीं समझेंगे, हमारी भूल दिखाई देंगी, या ऐसी कोई वृत्ति हमको स्वीकार किया जाए, हमको मान दिया जाए, ये सब है एक प्रकार की डर की निशानी। तो अगर हमारे अंदर ये वो डर नहीं, भयानक डर नहीं, लेकिन देह अभिमान की स्थिति में डर हमेशा रहेगा, मेरे को कोई समझेगा नहीं या जानेगा नहीं, मेरे को गलत समझेगा, मेरी भूल देखेंगे, ये भी एक प्रकार का देह अभिमान का डर है। और जब इस प्रकार का डर होता है तो हम औरों को भी, हम अपने आप की रक्षा करने के लिए औरों पर जज करेंगे। बहुत सूक्ष्म बात है, हम अपने आप को बचाने के लिए औरों को जज करेंगे, यानी कि औरों का नुक्श निकाल के उनके भूल देखेंगे, उनकी गलतियां देखेंगे, ताकि हम अपने आप को बचा सके कि हमको अपनी गलती ना दिखाई दे और किसी को भी हमारी गलती ना दिखाई दे। बहुत ही सूक्ष्म बात है, लेकिन अगर हमारे भाई भाई की दृष्टि, बाबा कहते हैं भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि माना ऐसे नहीं ये मेरा भाई है ये मेरा भाई, लेकिन वो सेपरेशन नहीं, वो अलगपना नहीं। अपने लौकिक भाई में आपको याद हो गया, अभी छोटे बड़े हो जाते हैं तो सबके झगड़े होते हैं, भाई 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 के भी होते हैं, भाई बहन के भी होते हैं। अज्ञान काल में ये भी एक प्रकार की किच्चड़पना है, बाबा ने आज बोला ना इसके हिसाब से वो। लेकिन जब छोटे थे तो हम अपने आप को अलग समझते थे, कभी भाई बहन से कभी झगड़ा हुआ 2 सेकंड के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मेरा भाई है मेरी बहन है ये फीलिंग होती है ना, तो उसमें फिर हम भूल नहीं निकालते हैं, भले कैसे भी उसकी पर्सनालिटी हो, कैसे भी उसके संस्कार हैं, तो हम समझ लेते हैं। तो अब मेरा भाई मेरी बहन, ये भी इस ये स्मृति भी एक सत्यता की निशानी है। इस स्मृति से रहना और आपस में संबंध में आना, ये है सत्यता की निशानी। भले खून नहीं है हमारा एक, खून तो अलग अलग है, अलग अलग माँ पिता के बच्चे हैं स्थूल में, लेकिन हमारा रूहानी खून, आध्यात्मिकता का खून जो हमारे आत्मा में पल्सेट होता है, ये तो वही सेम खून जो हम सब में है। लाल खून नहीं, लेकिन लाइट का खून। तो ये स्मृति बना के रखना भी, ये भी एक सत्यता की निशानी। किसी को जज नहीं करना, कोई भी स्थिति हो, कोई कुछ हो भी जाए, ऐसा चूज लव, ये मेरा मंत्र है आज का, चूज लव। कुछ मेरे को बोलता भी है ऐसे गलत, थोड़े 1 सेकंड के लिए थोड़ी असर हो जाएंगी, लेकिन नहीं, मेरे को आई हैव टू चूज लव, लेट मी चूज लव। अगर हम ऐसे स्मृति रखेंगे ना, तो सामने वाली व्यक्ति भी इस प्रकार की स्मृति रखेंगे। तो ब्राह्मण आत्मा बनना माना इस प्रकार की सत्यता, नेचुरल, उसमें हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा है हमको मिलेगा, ये मंत्र दादी जानकी ने हमें शुरू शुरू में दिया। कभी ऐसे, वैसे तो ज्ञान की बात है, लेकिन मुझे याद है कुछ हो रहा था, मेरी सेवा एक थी जिसमें से उस सेवा से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी और कुछ और प्रोग्राम चल रहा था, तो दादी ने मेरे को पूछा तुम चलेगी? मैंने कहा हाँ चलेंगी, लेकिन चलने की इच्छा तो है लेकिन छुट्टी नहीं है। तो दादी ने हाथ पकड़ा और दादी ने बोला, हमेशा ये याद रखना कि मेरा जो भाग्य है वो भाग्य मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। वैसे ज्ञान के हिसाब से तो आप समझेंगे, आपको पता है, लेकिन उस घड़ी जब दादी ने हाथ पकड़ा, तो जैसे मुझे वरदान दादी ने दे दिया कि यही समझ, ये मेरा भाग्य कोई मुझे से छीन नहीं सकता है। इसलिए न किसी से ईर्ष्या, न किसी से तेरा मेरा, न कंपटीशन, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। न किसी का मेरा हो सकता है, न मेरा किसी से हो, किसी का हो सकता है। ये भी एक सत्यता की स्मृति। तो सत्यता की स्मृति के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे ढंग हैं। अगर और जो हम सोचेंगे ना, आजकल खास ये कहते हैं कि जो वैसे लोग प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये देना ये देना, तो आजकल साइंटिस्ट भी इस बात का रिसर्च करते हैं कि प्रार्थना ऐसे नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास नहीं है भगवान मेरे को दो, लेकिन जिस बात की जरूरत है समझ लेना वो बात आपको मिल गई और भगवान को प्रार्थना करना उसके लिए थैंक्स देने के लिए, उसके लिए आभार मानने के लिए। तो एक इसमें कहानी है कि जो अमेरिका में भी जो उनके आदिवासी लोग होते हैं ना उनको भी इंडियंस कहते हैं, क्योंकि जब कोलंबस इंडिया ढूंढने गया तो उस दिशा में गया, अमेरिका की दिशा में गया। तो वहां गया तो उसके जो लोकल जो उनके आदिवासी मिले उनको, उसने सोचा ये तो इंडियंस हैं, तो उनको भी इंडियंस कहते हैं, लेकिन हम इंडियंस अलग वो इंडियंस अलग, तो वो उनको रेड इंडियंस कहते हैं वैसे। लेकिन वो लोग भी जो आदिवासी होते हैं ना, इसलिए आदिवासी को कैसे हर बात की नेचर का ज्ञान होता है और सब नेचर से अपना काम करते हैं, अपनी अपना कारोबार चलाते हैं। तो इस प्रकार से एक साइंटिस्ट है वो ऐसे रेड इंडियन के पास गया, आदिवासी के पास गया। उसने कहा कि तुम जब प्रार्थना करने जाओ ना तो मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मुझे लेके चलना। तो इंडियन ने बोला ठीक है मैं अभी जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना। तो बहुत दूर दूर तक पैदल गया और प्रार्थना करने इसलिए जा रहा था कि बहुत समय से बारिश नहीं आई थी, तो उन्हों को भी खेती करने के लिए बारिश की जरूरत थी। तो वो प्रार्थना करने गया तो साइंटिस्ट साथ साथ में चला। तो वहां एक स्थान पर पहुंचे, उसने प्रार्थना की, फिर बोला चलो चलते हैं अभी। तो उसने बोला तुमने क्या प्रार्थना की, मैंने तो देखा नहीं तुमको प्रार्थना करते हुए। तो कहता मैंने प्रार्थना की। तो बोला क्या प्रार्थना की तुमने, तो कहा मैंने प्रार्थना की, मैं ऐसे खड़ा रहा, मैं भगवान से प्रार्थना की और मेरे मन में मैंने अनुभव किया कि बारिश आई। ऐसे अनुभव, बारिश आई मेरे आसपास में, पानी हुआ, मेरा पांव भी मेरे घुटने तक पानी आ गया और मैंने भगवान को इस बारिश के लिए थैंक्स दिया कि आपने हमको बारिश दी। बस प्रार्थना पूरी हो गई। उसने तो कुछ देखा नहीं, वो साइंटिस्ट साथ में गया था ना, उसने तो कुछ देखा नहीं, बारिश तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब वो अपने गांव वापस पहुंचे तब तक बारिश आ चुकी थी। कहने का मतलब है कि वो डेफिसिट कॉन्शियसनेस, माना कि कमी की स्मृति, अगर हम कमी की स्मृति से कोई चीज देखते हैं ना तो कमी कमी ही रह जाती है। अगर हम कमी देखेंगे तो कमी ही रहेगी, लेकिन कर्मी को भी भरपूरता से देखेंगे तो वो भरपूर हो जाएंगे। तो ये जो प्रार्थना की बात आपको सुनाई, आप अपने जीवन में कोई भी हिसाब से कोई भी बात आपको कमी लगे ना तो बस आप ऐसे नहीं, हम तो बाबा को प्रार्थना नहीं करते हैं लेकिन हम बाबा से थैंक्स तो मानते हैं, हम बाबा का आभार तो मानते हैं कि बाबा ने हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, अच्छा अच्छा हम सुनते हैं, अच्छा अच्छा हम करते हैं, तो हम थैंक्स मानेंगे ना। तो कोई भी बात हो आप ऐसे समझो, बाबा कहते हैं ना कि अगर कोई गुण की कमी है ना तो वो गुण दान करना शुरू करो। तो वो कैसे होता है, अगर एक तरफ हम कहते हैं, हम बाबा को कह रहे हैं कि हमारे में कमी है, दूसरे तरफ बाबा कहते उस गुण का दान करो, कैसे दान करेंगे, है नहीं तो। आपने सोचा कभी, है नहीं माना, हम मन में स्मृति रखे कि हमको प्यार चाहिए ना तो हमको प्यार देना है, आ जाएगा और फिर हम भरपूर हो जाएंगे। तो कोई भी बात है वो कमजोरी की बात, संकल्प ये भी असत्यता हो जाएगी, शक्तिशाली बात को सोचना माना सत्यता को सोचना। और जो हम संकल्प करेंगे, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी हम बनाते हैं वही हमारे पास आती है। हम जब हिसाब किताब की बात सुनाते हैं ना कर्म फिलॉसफी की बात, तो आप सोचो आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य शक्ति है, और आत्मा की आप आत्मा की स्मृति लाएंगे तो क्या होगा कि वो वाइब्रेशन उससे निकलते ही है। आत्मा कभी आत्मा की स्मृति से ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा क्या कि आत्मा ले रही है, आत्मपन की स्मृति आप रखेंगे तो आपको ऐसे जैसे होगा कि आपसे निकल रहा है आत्मा से, क्या वाइब्रेशन आते हैं यानी फैल रहा है, जो भी आत्मा है वो उससे फैल रहा है, ऐसे नहीं लेने का नहीं। तो अगर हिसाब किताब में आप देखेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो वो वाइब्रेशन बनेंगे और वो आपके आपस में वही वाइब्रेशन होंगे। तो अगर कोई आपको कोई नेगेटिव चीज देगा ना, तो वो जो आपने वो जैसे कि वो शील्ड बनाया ना अपने लिए, व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, नो शील्ड शील्ड माना वो ना लक्ष्मण रेखा नहीं, मेरे मुंह पर है वो नाम भूल गया, कवच, कवच समझो, कवच से प्रोटेक्शन होती है, लेकिन ये कवच से ये आपने बनाया ना, ये जो वाइब्रेशन बना है जो भी होगा ना वो और कोई आपको नेगेटिव बात देगा ना तो वो आपने जो वाइब्रेशन बनाया उसे फिल्टर थ्रू आएगा ना, तो वो उनकी नेगेटिव बात पॉजिटिव में परिवर्तन होकर फिर आपके पास आएंगी, क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन बनाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपने बनाए तो आपके यहां तो वाइब्रेशन ही है पॉजिटिव। कोई नेगेटिव चीज देगा तो आपके पास आएगी ही नहीं नेगेटिव रूप में, वो भी परिवर्तन हो जाएंगी पॉजिटिव के रूप में और फिर आपके पास आएंगी। तो हम जो बनाते हैं, जो पैदा करते हैं, जो इमर्ज करते हैं वही हमारे पास आता है, रिपरकशंस उसको कहते हैं, हमारे पास आता है। तो इसलिए अभी आज की मुरली से आपने क्या लिया ये बताओ, अभी अगर मैं बोलूंगी तो मेरा तो चलता ही रहेगा, आप सुनाइए आपने आज की मुरली से क्या विचार सागर मंथन किया, किसी ने किया कुछ विचार सागर मंथन, या ज्ञान बल योग बल सुख से सबसे बड़ी बात है। मैं एक बात सुनाती हूँ, चलो आपने याद दिलाया तो ये बात सुनाती हूँ कि आजकल हमको ये अपने आप को चेक करने की बहुत जरूरत है कि हम किस लक्ष्य से ज्ञान में आए थे, किस लक्ष्य से हमने बाबा को अपने आप को बाबा को सरेंडर किया, क्या क्या अनुभूतियां हुई थी उस समय जिससे हमको ये जीवन पर ये मार्ग पर चलने की प्रेरणा आई थी, और क्या हमने अपने भविष्य लिए कि क्या क्या उम्मीदें रखी थी। देवी देवता तो बनेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी ज्ञान में ज्ञान जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन भी और अच्छी बने। तो आपने क्या लक्ष्य रखा था, क्या अनुभूति हुई थी और क्या अपने भविष्य के लिए विचार था। तो आज भी जो लक्ष्य था, जो अनुभूति थी, जो विश्वास था, उसी अनुसार हम चल रहे हैं, समझी मेरी बात, क्या उम्मीद अपने लिए थी वो उम्मीद आज भी है और वो उम्मीद हमारे जीवन में प्रैक्टिकल आ रही है या हम चल रहे हैं, चलता है जैसे चलता है ऐसे चलता है, चलो सेवा तो की, मधुबन में बैठे हैं, अच्छा है। आज जैसे बाबा ने बोला ना, बाबा के सामने बैठे तो कैसे बैठे, पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ऐसे थोड़ी बैठेंगे, वो फुर्ती से, वो फलक से, वो झलक से, तो वो फलक वो झलक हमारे पास है, कितने परसेंटेज में है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन लाती हैं, वो सब नोट करना चाहिए। कल परसों बाबा ने बोला नोट नहीं करने की जरूरत है, लेकिन मैं कहूंगी अभी कि नोट करने की बहुत जरूरी है। पेपरलेस ब्राह्मण तो फोन वाले ब्राह्मण बन गए हैं, तो ऐसे पेपरलेस नहीं बनना है। भले फोन के हिसाब से पेपरलेस बन जाओ वो अलग बात है, लेकिन आप लिखने बैठेंगे ना आज की रात, सोचना क्या क्या हमारे में उम्मीदें थी अपने लिए, और आज भी वो उम्मीद है, और आज भी हम उस उम्मीद अनुसार चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं, कौन सी बातें, ये तो आप लिखते रहेंगे एक सप्ताह का, तब मैं बताती हूँ। ये लिखेंगे पहले क्या क्या बातें थी, अभी चल रहे हैं या नहीं, क्या क्या बातें हैं जिससे हमारे जीवन में हम जैसे के डिस्ट्रैक्ट हैं, यानी कि हमारा ध्यान और बातों में खींचा हुआ है। तो कौन सी बातें हैं जिसमें हमारा ध्यान खींचा हुआ है, और हम उस बातों से कैसे मुक्त होंगे। लिखेंगे ना तो कितना लिखेंगे, इसमें तो बहुत लिखेंगे। लिखने का क्यों इतना जरूरी है कि आप विचार करते रहेंगे ना, तो विचार करते करते और कहां विचार चले जाएंगे, और भी जो बैठने थे सोचने वो भी भूल जाएगा। इसके बजाय पेपर पेन लेकर बैठो, अच्छा चलो क्या बात है, कौन सी बातें हैं मेरी बुद्धि को खींचती हैं, और एक एक बात को लेकर देखेंगे आपको कैसे उनसे मुक्त होना है। इस बात से भी मुक्त, इससे भी मुक्त, इससे भी मुक्त, तो उसकी जगह पर उसकी जगह भरनी होगी, तब उस बात को से। दादी ने एक बहुत ही अच्छा मिसाल एक बारी दुआ, चलो समझो आपको कुछ दर्द है, कुछ प्रॉब्लम है पांव में, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने कहा ये तो आपको प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको जो अंदर निकालना है वो निकालने, कोई चलो वो गुमड़ा हो जाता है ना तो सारा अंदर भर जाता है, तो उसको निकालने के लिए पहले निकालेंगे, निकालेंगे तो फिर होल हो जाएगा, और दर्द मिटना तब होगा जब वो होल भर जाएगा, तब दर्द मिटेगा। इसी प्रकार से अपने आप में भी कोई कमजोरी है तो उसको देखने, फिर निकालने की मेहनत, फिर उसको भरने की मेहनत, तब जाके मन शांत होगा। तो इस प्रकार का इतना अपने आप को अंदर से चेकिंग करने की जरूरत है। आप सभी वैसे सेवा के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन समय पुरुषार्थ का अभी है। अभी 2-3 सप्ताह पहले ही अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला था ना, एक समय आएगा तब आपको अपने लिए कुछ समय नहीं मिलेगा। अभी तो फिर भी बैठे, अभी तो इतने सारे भाई बहन क्लास करने लिए बैठे हैं रात्रि को, लेकिन वो समय आएगा तो सब कुछ करने का चांस नहीं रहेगा। उस समय उठने के सोने तक सेवा ही करनी होगी, उसमें आप ये नहीं सोचेंगे। तो अभी है, इस प्रकार से अपने आप को एक एक घड़ी पर चेक करना। और पता है सच्चाई की परिभाषा क्या है, हमारे जीवन में अगर सच्चाई है, सच्चाई माना लिविंग सच्चाई, आप जो भी करो ना हर घड़ी पर एक भाग हमारा हो जो हम खुद को न्यारा होकर देखते रहे। दादी याद दिलाती थी संकल्प करो ना तो भी सोच के संकल्प करो, सोच के सोच करो, तो कितनी अंतर्मुखता की जरूरत है, जिस अनुसार हम अपने आप को हर घड़ी देखते रहे। जो भी हम करते हैं ना, क्या कर रही हूं मैं, ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं जाता है, वास्तव में सेकंड की बात है। A part of me is always observing myself. एक मेरा भाग है जो खुद को न्यारा होकर हर घड़ी देखता है. ये भी एक प्रकार की आत्म अभिमानी स्थिति है कि मैं अपने आप को न्यारी होकर देखती रहूं, चेकिंग करती रहूं. वो तनाव वाला चेकिंग नहीं, ओ बाप रे बाप, ऐसा चेकिंग नहीं, सूक्ष्मता से अपने आप को देखते रहना, ताकि भूल होने से पहले हम अपने आप को कैच करें. भूल हो जाए उसके बाद देख ले, बाबा कहते ये तो सब करते हैं, लेकिन कुछ हो जाए, अगर चलो भूल हो भी गई तो अपने आप को कैच करना, ये हो गया क्यों हुआ, चलो हो गया चलता ही रहता है, ऐसे नहीं, हुआ तो क्यों हुआ, कहां मेरा ध्यान खिस गया जिस कारण से ये हुआ. ऐसी चेकिंग. अच्छी बात सुनाई ना. मैं समझती हूँ आप से, आप में से कोई प्रश्न पूछे आज की मुरली कहो या फल फूल स्थूल फल फूल की बात थोड़ी है. इसमें से बैज में एक तरफ लक्ष्मी नारायण है, आपने देखा ना बाबा ये जो बात करते हैं ना ये बैज की बात कर रहे हैं। और बाबा के दिनों में भी हम जब ज्ञान में आए ना तो आपको पुराने कोई हो गए तो याद होगा एक प्लास्टिक का बैज होता था, उसमें एक तरफ लक्ष्मी नारायण था, दूसरे तरफ कई ऐसे ही शंकर था, शंकर का फोटो था। तो आप सोचिए अगर ये बैज आप पहन के कहां भी जाएंगे और ज्ञान सुनाएंगे, इसका ज्ञान सुनाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको भी फल फूल मिलेंगे, उनको भी फल फूल मिलेगा। इस हिसाब से इतनी समझ मिलती है उससे, आप जो किसी से सुनाने वाले हैं आपको खुद सुनाने से फल फूल मिलेंगे, आपको खुद समझने से फल फूल की प्राप्ति। फल फूल माना ये स्थूल फूल फल फूल की बात नहीं है, मन में प्राप्ति की जो अनुभूति है, शक्ति की या श्रेष्ठता की और समझ की जो प्राप्ति है, ये भी एक प्रकार का फल और फूल है ना। और जो ये समझ फिर किसी और को समझाएंगे तो उसको भी फल फूल की प्राप्ति हो गई। इस हिसाब से कि वो भी चमचो उसको प्रेरणा आए कि मुझे ब्राह्मण बनना है और मुझे देवता बनने का पुरुषार्थ करना है और बाबा से हमको ये मिलता है, ये भी एक प्रकार का फल फूल हो गया। इस हिसाब से समझ के चंद्रमणि दादी का दिन है वैसे 5 मिनट, हाँ 5 मिनट, चलो 9:30 बंद हो जाता है। अच्छा